भक्त जब भक्ति से, भावों से अपने भीतर संगीतमय होता है, उसकी भक्ति बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के प्रेम पूर्वक प्रवाहित होती है, तब वक्ता मर रचित हो जाता है, वक्ता मर सृजित हो जाता है। भक्त को जो अमर कर दे उसका नाम है भक्तामर। भक्ति की अमर गाथा है ये भक्तामर। चमत्कार उसके साइड बाय होते हैं, चमत्कार करना उसका कभी उद्देश्य नहीं होता। जैसे पुराने आचार्य कहा करते थे कि अगर गेहूं की फसल बोई है तो गेहूं तो आएगा ही, साथ ही साथ घास भी तो आएगी, खाकला भी तो आएगा जो गायों को चरने के काम आएगा। ऐसे ही जब एक व्यक्ति धर्ममय होता है, भक्तिमय होता है, प्रेममय होता है, आनंदमय होता है, ज्ञानमय होता है, तो पुण्यों का सृजन तो साइड बाय स्वयं हो जाएगा। वहां लक्ष्य पुण्य नहीं है, पुण्य उस खाकले की तरह है जो स्वयं घास के साथ आ जाता है, जो स्वयं फसल के साथ आ जाता है। जैनाचार्यों ने हर युग में ऐसे स्तोत्रों की रचना की, ऐसे अनुष्ठान की विधियां दी जिससे चतुर्विध तीर्थ और विशेषतया सावक और साविका वर्ग अपने जीवन को, जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, समृद्ध बना सके, जिससे तन धन प्रज्ञा सबकी समृद्धि स्वयं प्रकट हो सके। लेकिन उनको यह सारी साधनाएं देने से पहले उन साधनाओं का विवेक विज्ञान दे दिया, बोधि दी। बोधि यह दी कि भौतिक सुख हमारा लक्ष्य नहीं, लेकिन भौतिक दुखों में रहता हुआ आदमी आत्मभावों में आसानी से गति कर नहीं पाता, इसीलिए तुम धर्म आराधना ऐसे करो कि पुण्य स्वयं तुम्हारे साथ काया की छाया की तरह प्रविष्ट होते चले जाए। और विशेष बात कि जैसे जैसे एक व्यक्ति स्वभावमय होता है, धर्ममय होता है यानी स्वभावमय होता है, स्वभावमय होता है मतलब प्रेममय होता है, और जैसे जैसे हम प्रेममय होते हैं वैसे वैसे बीमारियों को पैदा होने के कारण समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि बीमारियां पैदा ही वहां होती है जहां आदमी के अंदर प्रेम ना हो, मोह वासना हो। मोह वासना होगी तो बीमारियां पैदा होगी, प्रेम होगा तो बीमारियां समाप्त हो जाएगी, बीमारियों के कारण समाप्त हो जाएंगे। और कारण की परिसमाप्ति हो जाना ही बीमारियों की श्रृंखला की समाप्ति की सूचना है। हो सकता है पूर्व अज्ञानवश हमने जो कर्म बांधे उसकी बीमारियां आज उदय में आई है और भोगनी भी पड़ रही है, लेकिन वह बीमारियां जो इस समय व्यक्ति भोग रहा है वह उसके पूर्व में अर्जित अशुभ कर्मों का परिणाम है, या कह दो पूर्व में जी गई गलत जीवन शैली का परिणाम है, या कह दो पूर्व में सोची गई गलत सोच और संस्कृति का परिणाम है। लेकिन वर्तमान में कारण समाप्त हो सकते हैं अगर एक व्यक्ति वर्तमान में प्रेममय हो जाए, तो भक्तिमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। इसीलिए हर एक व्यक्ति को कुछ देर अपनी दिनचर्या का ऐसा देना जिसमें वह बेशर्त भक्ति में डूब सके, बिना किसी कामना की सेवा भावना में डूब सके, सद्भावों से अपने आप को चार्ज कर सके, अप्लावित कर सके, सद्भावों से और परमात्मा के प्रति समर्पण भावों से जब एक व्यक्ति अपनी दिनचर्या का थोड़ा भी हिस्सा 48 मिनट भी अगर निकाल ले तो वे 48 मिनट उसके पूरे दिन को ही, दिन की दिशा को ही बदल डालेंगे, दिशा और दशा सब कुछ बदल जाएगी। लेकिन हमारे पास विषय की सुस्पष्टता हो कि हमारा लक्ष्य आनंदमय होना है, स्वभावमय होना है। और यह स्वभाव में जब प्रेम प्रकटे तो उस प्रेम को दूषित होने से बचाना जरूरी है। स्वभाव में आनंद बरकरार रहे इसके लिए उन छिद्रों से, उन दोषों से बचना जरूरी है जो हमारे प्रेम और आनंद को दूषित करते हैं, विकृत करते हैं और हमें कहीं ना कहीं पुनः पुरानी कुंठाओं और संकीर्णताओं में घसीट कर ले जाते हैं। यही तो होता है लोगों के साथ। उठता तो है भावों का अतिरेक, भक्ति भी आती है, प्रेम भी आता है ना, कभी कभी सेवा भावना भी आती है, कभी कभी बिना किसी कामना का समर्पण भी घटित हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद में वो ज्वार वापस ठंडा पड़ जाता है ना। अभी देखो सावन भादवों में आया है, फिर आगे क्या होने वाला है? ये 2 महीने तक का ज्वार अलग रहेगा, फिर 2 महीने व्यक्ति के अंदर वापस वो भक्ति, प्रेम, स्वभाव, ज्ञान, दर्शन, तपस्या, आनंद, ये सारी बातों का ज्वार फिर वापस क्या दिखाई देगा? वही तेरी मेरी, वही सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाने वाली है। ऐसा हर बार होता रहा हमारे साथ। क्यों होता है? कारण खोजना ना, क्योंकि ये जो स्वभाव की साधनाएं है ना, स्वभाव को पोषित करने की साधनाएं, ये साधनाएं अगर व्यक्ति पूरे विवेक और समझदारी से करे तो उसके लिए 12 महीने ही क्या सब समान है। वो हर स्थान पर हर निमित्त से खुद को साध रहा होगा। किसी भी माहौल में चला जाए तब भी उसकी दृष्टि स्वभाव में विकसित होने वाली होगी, विभावों में रमण नहीं करेगी। लेकिन ये कब पता लगेगा? जब हमें विभाव में गति करना, कषायों में जाना बहुत तनाव दे, बहुत भारी लगने लगे, वो विकृतियां हमें बर्दाश्त ना हो, तब पता लगेगा कि अब हम इस विकारों में ज्यादा टिकने वाले नहीं है। अभी तक उल्टा होता रहा है, चिंता करना, विकारों में रहना, मोह वासना में रहना, कलह क्लेश में रहना, ये सब कुछ हमारे लिए इतना नॉर्मल है कि इसके बिना जो रहना होता है ना वो हमारे लिए बहुत अबनॉर्मल लगता है। ऐसे ही है ना। लेकिन हमारे अंदर वो स्थिति घटित हो जाए कि हमें जरा सा कलह क्लेश, इतना सा, एक बाल की पतली तार की तरह इतना सा कलह क्लेश भी हमें स्वीकार ना लगे, वहां हमें बेचैनी हो, हमें वहां से हटने का मन करे और हम तुरंत अपने भावों को वहां से मोड़ने वाले बन जाए, हमें जरा सा क्रोध, ऊंची आवाज, शिकायती भाव, शिकायती विचार, विचार मात्र भी, एक शिकायत का विचार उठा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस विचार के साथ ही हमें खेद पैदा हो, अरे ये विचार नहीं चाहिए। जरा सा एक राग द्वेष का, भेदभाव का विचार आए, वृत्ति भी पैदा हो तो तुरंत अंदर में बोध आए ये वृत्ति नहीं चाहिए जो मुझे और मेरे प्रेम को बांटती हो, समाप्त करती हो, मुझे वृत्ति भी नहीं चाहिए। जैसे जरा सी गंदगी कपड़ों पर लग जाए तो क्या होता है? लगी रहने देते नहीं ना। गंदगी कपड़ों पे लग जाए, पैरों में लग जाए, हाथों पे चिपक जाए, चेहरे पे लग जाए, देर करते? तुरंत साफ करते। जब तक साफ ना करे व्यग्रता रहती है, अरे ये हाथ पहले धो के आ जाओ, पैर जरा साफ करके आ जाओ, कपड़ा जरा धुलवा लो, कितनी व्यग्रता रहती है उस गंदगी को मिटाने के लिए। ऐसे ही इस दिमाग और दिल में जो गंदगी आती है ना उसको मिटाने की व्यग्रता होना कि मुझे तनाव सहन नहीं, स्वीकार नहीं। ये तनाव क्यों? मैं प्रेम में हूं, आस्था में हूं, आनंद में हूं। जब इतना भाव अतिरेक होगा ना तब वो भक्तावर है ना वो स्वभाव बनने लगेगा, भक्तावर हमारा स्वभाव होने लगे, भक्ति, प्रेम, ज्ञान, आनंद हमारा स्वभाव के रूप में होने लगे और इतना हो जाए कि हमें विभाव में जाना ऐसे लगने लगे जैसे अचानक कोई जलती अग्नि के समक्ष हमारी अंगुली टच कर जाए तो कैसा होता है? एक थोड़ी सी अंगुली लग जाए ना किसी आंच पे तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। ये प्रक्रिया कितनी फास्ट होती है। गर्म तपेली पे हाथ लग जाए, गर्म तवे पे हाथ लग जाए, जरा आग के हाथ लग जाए, हमारा हाथ कितना जल्दी बाहर आता है। उतनी जल्दी कषायों से बाहर आना, उतनी जल्दी विकारों से बाहर आना, उतनी जल्दी वासनाओं से बाहर आना, उतनी जल्दी चिंताओं से बाहर आना। अरे चिंता क्यों? ये स्थिति हमारे में आना आ सकती है? नहीं। क्या लगता है आपको? हाँ, आ सकती है ऐसी स्थिति या आ चुकी है ऐसी स्थिति? आ चुकी है किसी को ऐसी स्थिति? हाँ, नहीं आई अभी तक? नहीं आई ना अभी तक? नहीं आई किसी को? और आने में देरी किस बात की है? वो कह रहे थोड़ा समय लगेगा। नहीं, समय नहीं, भावना होगी। समझ और भावना है ना तो स्थिति अभी आ जाएगी। और अभी आ जाए, और हमें तो थोड़ी आपके लिए सोच रखनी पड़ेगी कि सावन भादवा में दिखने वाले हो, तो अभी ही अपने परिणामों को इस दशा में ले आओ कि हमारे परिणामों की विकृति हमारे द्वारा स्वीकार ना हो, हम एक क्षण में कषायों से बाहर आना सीखें और उतने ही इसकी तरफ सजग रहें, सभान रहें। वो सजगता, वो भान इतना हमारे अंदर गहरा होना कि जैसे ही विकार में जाने लगे हट जाओ और फील हुए ये आग है, ये चिंता ये आग है जला रही है, ये वासना ये आग है और वैचारिक है, मस्तिष्क में है। और बड़ी बजब की बात कि मस्तिष्क कुछ कर नहीं सकता, खाली सोच सकता है। और वो सोच सोच करके इतनी इच्छाओं से अपने आप को भर डालता है, इतनी चिंताओं से अपने आप को भर डालता है कि वो मस्तिष्क इतना भारी बन जाता है कि बाकी पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र को और कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता को खत्म कर डालता है। बात चल रही थी हमारी किसी साइकेट्रिस्ट के साथ, वो कह रहे थे आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई है, हर घर के अंदर कोई ना कोई मानसिक रोगी मिल रहा है। बोले महाराज साहब, ये मानसिक रोग कैसे दूर हो सकते हैं? मैंने कहा आप लोग कर रहे हो ना। वो मुस्कुराते हुए बोले हम लोग दवाई दे देते हैं लेकिन फिर भी हम एक आदमी को पूरा ठीक नहीं कर सकते। हम रोकथाम के उपाय कर सकते हैं, हम पूरा ठीक नहीं कर सकते। हमने बोला भाई साहब, पूरा ठीक आदमी तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर आध्यात्मिक वृत्तियां पैदा नहीं हुई, जब तक उसका स्वभाव परिष्कृत नहीं हुआ हो, जब तक उसको ये समझ ना आया हो कि अति सोच एक बीमारी है। और आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी क्या देखो जरा, अति सोच है या नहीं? कितना सोचे जा रहे हैं, छोटे छोटे बालकों के अंदर भी हम लोग इतनी सोच ही डालते जा रहे हैं कि बस तुम सोचो भविष्य में करोगे क्या, क्या करेंगे, जब सामने प्रेरणा आएगी निमित्त आएगा खुद ब खुद कर लेंगे। लेकिन कोई ऐसा बोलता तो नहीं कि बड़ा होगा तब खुद ही कर लेगा, योग्य है, मुझे भरोसा है, जब सामने निमित्त आएगा स्वयं ही अपनी जिंदगी अच्छी बनाएगा। ऐसा हम बोल ही नहीं पाते कि मुझे भरोसा है अपनी संतान पर कि जब बड़ा होगा अपने भविष्य को बहुत सुंदर ही बनाने वाला है। वो बोल पाते हो ऐसा? आप में से कितनी माताओं को एक ही चिंता रहती है, ये बच्चा बड़ा होकर के करेगा क्या, ये अभी इतने मार्क्स ला रहा है तो इसका आगे होगा क्या, इसको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसकी जॉब कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, ये फेलियर होगा या पास आउट होगा, हर बार चिंता करते हो। ये सब कहां से हो रही है? दिमाग से। अब ये चिंता आपको पसंद है या चिंता छोड़ना? पसंद छोड़ना है, लेकिन छोड़ोगे नहीं, छोड़ पाओगे नहीं, क्योंकि एक माता तो मुझे यहां तक मिली, बोलती हमारा सब रोज सुबह उठते ही नई चिंता होती है। मैंने कहा फिर, और किसी दिन ऐसा हो कि कोई आपको चिंता देने वाला ही ना हो तो क्या फिर एक चिंता हो जाएगी? क्या चिंता किस बात की करूं? तो उसको ये चिंता हो जाती है कि आज चिंता किस बात की करूं जब सब कुछ सही है। तो बड़ा दिक्कत है हमारे इस मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क चिंताओं में रहता है। लेकिन अगर आस्था पैदा हो जाए, और आस्था भक्तामर से पैदा ना हुई, प्रार्थना से पैदा ना हुई, धन्यवाद से पैदा ना हुई, तो फिर कैसे पैदा करोगे? इतने साधन है हमारे पास जिन्हें हम रोज जुटाते हैं, जिन साधनाओं को हम लोग रोज करते हैं। अधिकतर लोग सुबह उठते ही नवकार मंत्र बोलते हैं, बोलते हो ना? अधिकतर लोग सुबह उठते ही कुछ ना कुछ अपना पूजा पाठ अनुष्ठान जाप कुछ ना कुछ तो करते हैं। इतना करने के बावजूद भी विश्वास किस पे होता है? चिंता नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? ये सेंटेंस कि चिंता नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा, हम में से कितने लोग इस सेंटेंस को बोलते हैं, सोचते हैं? लगभग सभी ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, और ऐसे ही हमारा मानना भी है कि चिंता नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। लेकिन अगर आपको इस जीवन का वास्तविक दर्शन प्राप्त करना है, सत्य दर्शन उपलब्ध होना है, तो इस चिंता को और अति सोच को उतना ही दूर करो जितना जलते हुए आग से हाथ को दूर रखते हो। दूर करो और अपने भीतर हर चिंताजनक वाक्य के साथ एक आस्थाजनक वाक्य को लाओ। मैं क्यों चिंता करूं? होगा ही, भरोसा है, होगा ही, विश्वास है, आज दिन तक सारे काम हुए, आगे भी होंगे, गुरु की कृपा है मेरे साथ। यही तो बात थी आचार्य मानतुंग में, कि उन्हें भरोसा है कि परमात्मा है मेरे साथ। हमें भरोसा है कि हम परमात्मा की दृष्टि में है, हम गुरु की दृष्टि में है? नहीं है ना भरोसा? वो कह रहे नहीं है, भरोसा ही नहीं है। आपको लगता है मेरे करने से होगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा? ऐसे ही लगता है मेरे करने से होगा, नहीं करूंगा तो कैसे होगा? पर आज दिन तक इस दुनिया में जो अनुभव ज्ञानी लोग हुए ना, उन्होंने एक बात कही कि आपके करने से नहीं होता और आपके न करने से भी नहीं होता, लेकिन चिंता करने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे होगा? वो कहते केवल आप अपने वर्तमान में उपस्थित रहना सीख लो, अटेंटिव रहना सीख लो, वर्तमान की उपासना करना सीख लो, काम स्वयमेव हो जाएगा। मार्गानुसारी होना है, श्रोतापन्न होना है, समके दृष्टि होना है, जीवन के प्रति सही समझ विकसित करनी है। तो इस प्रथम गुण को जीवन में अपनाओ कि हमें वर्तमान की उपासना करनी है, जो प्रेजेंट है उसमें मेरे अटेंटिव रहूं, अपने प्रेजेंट में अटेंटिव रहूं, केयरलेस ना बन जाऊं, लापरवाह मत बनो, केवल अटेंटिव रहो। और तब क्या होगा? चिंता मत करो और अटेंटिव रहो, अब काम स्वयं में होंगे। और आस्था रखो कि है आपके साथ, आप अकेले नहीं हो, आप में से कोई भी अकेला नहीं है, हम सबके साथ अनंत शक्तियां जुड़ी हुई है। देख पाओ कि काम बनते हैं या नहीं बनते, दोनों में ही कमी कहां रहती है, तकलीफ कहां होती है। जिस व्यक्ति ने बहुत चिंता करके अपना काम बना लिया ना, उसके काम बन भी गए अगर, तब भी वो परेशानी फिर उठाता है, क्योंकि इतनी चिंता करने से उसने अपना स्वास्थ्य खराब किया, इतनी आशंकाएं कुशंकाएं रखने की वजह से उसने अपने साथियों लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया, और जब लोगों पे आपने भरोसा नहीं किया, लोगों ने आप पे भरोसा करना छोड़ दिया, और इतना काम भी बना लेकिन फिर आपको लगा कि मैं तो फिर अकेला रह गया, मतलब क्या हुआ? और कई बार लोग बहुत अमीरी की हद तक पहुंच करके फील करते हैं कि अब यहां मेरे साथ सच्चा साथी कोई नहीं, क्योंकि वे हमेशा सबको संदेह की निगाहों से देखते रहे और संदेहों के साथ खुद को विकसित करते चले गए। खुद तो बहुत पैसा कमा लिए क्योंकि उनका लक्ष्य था, कल्प था, दिन रात की सोच थी। अपने अंदर उन्होंने पैसा 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 ही भरा रखा था, पैसा तो कमा लिया, लेकिन अब पता लगता है कि उनके आसपास बैठने वाला, साथ रहने वाला कोई भी नहीं बचा। जिंदगी ऐसी ना हो जाए हमारी, और हम अति बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके कहीं इस स्थिति पे ना पहुंच जाए कि जहां हमारे चारों ओर केवल संदेह और शंकाओं की दीवारें हो, केवल चिंता और भय हो, और उस भय और चिंता के प्रभाव से और अतिरेक से बचने के लिए हमें दवाइयां खानी पड़ती हो। दवाई खाएं ताकि भय ना लगे, नींद आ जाए। दवाई खाएं ताकि दिमाग सोचना बंद करे और नींद आ जाए। ये स्थिति आ रही है तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इस गलत दिशा से बचने के लिए हमें तुरंत चेतने की जरूरत है। इसीलिए जो स्वभाव की साधनाएं करते हो, वो साधनाएं इतने प्रेम और ज्ञान के साथ करो कि ये साधनाएं आपका जीवन बन जाए। हर चीज को हम पूरा दिन नहीं देते। हम खाने को कितना टाइम देते हैं? 10 मिनट, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। लेकिन वो खाना पूरा 24 घंटे हमको ऊर्जा से भर के रखता है, काम करने योग्य बनाता है। हम स्नान को कितना समय देते? मुश्किल से 10 मिनट, लेकिन वो 10 मिनट की स्नान 24 घंटे हमको फ्रेश रखती है। ओके, तो अगर आप सामायिक को, स्वाध्याय को, भक्तामर को, जाप को, नमोकार को, प्रार्थनाओं को 15 मिनट भी दोगे, 48 मिनट भी दोगे, वो 48 मिनट आपको नेक्स्ट 48 मिनट तक, नेक्स्ट 48 घंटों तक, नॉट मिनट, घंटों तक आपको स्वस्थ रख सकती है, ऊर्जान्वित रख सकती है। और जैसे हर थोड़ी देर बाद जब पेट को लगे कि अब भूख लग रही है, हम भोजन देना चाहते हैं क्योंकि अब पेट खाली हो गया है, काम करने की शक्ति कमजोर हो रही है, तो हम वापस कुछ ना कुछ भोजन से भर देते हैं। ऐसे जब जब लगे कि मन विचलित होने लगा है, परेशान होने लगा है, पुराने शंकाओं में जाने लगा है, अति सोच में फिर से जाने लगा है, यानी अब इस मन को वापस औषधि की जरूरत है। जब भूख का एहसास हुआ तो भोजन दिया, जब मन में वापस एहसास होने लगे कि यहां गड़बड़ी होने स्टार्ट हो गई है, तो तुरंत वापस अपने मन को स्वास्थ्य पोषण दो, और वो स्वस्थ पोषण देने के लिए वापस प्रार्थना में डूब जाओ, भक्ति में डूब जाओ, ध्यान में डूब जाओ, स्वाध्याय में लग जाओ, सामायिक में लग जाओ, स्वभाव पोषण की किसी भी विधा को अपना लो, और तब तक उस विधा में रहो जब तक कि मन की दुविधा वापस दूर ना हो जाए। कितना सरल है ये, बहुत सरल है, बहुत आसानी से हो सकता है, हर वक्त नहीं करना है। जब जब लगे कि मन डिस्टर्ब हुआ, वापस बैलेंस करने के लिए मन को तनाव मुक्त, अति सोच की बीमारी से मुक्त, शंका कुशंका इच्छाओं और सारे जंजाल और चक्रव्यूह से मुक्त करने के लिए बैठ जाओ। ठीक हो जाए मन, वापस अपने काम में लगो। जिसको जो करते हुए कर्म मिला इस दुनिया में रहते हुए, भाई लोगों को व्यापार करना, आप लोगों को गृहस्थी संभालनी है, रिश्ते नातों को संभालना है, सामाजिक व्यवस्थाओं को संभालना है, जिसको जो करते हुए कर्म मिला है वो अपना कर्तव्य कर्म करता जाए। कर्तव्य छोड़ना धर्म नहीं है, लेकिन उसके पहले अपने माइंड को सही तरीके से डायरेक्ट करें। घर से निकलते समय कपड़े स्वच्छ करके निकलते हैं, स्वच्छ पहन के निकलते हैं, क्रीज करके पहन के निकलते हैं। ऐसे ही हर काम पे लगने से पहले अपने दिमाग को भी, उसको भी ठीक करके जाओ। अगर दिमाग ठीक किए बिना चले गए तो आवेश में गाड़ी चला के एक्सीडेंट भी कर सकते नहीं। कितनी गाड़ियां केवल इसलिए एक्सीडेंट को प्राप्त हो जाती है क्योंकि चलाने वाले ड्राइवर ने अपने माइंड को पहले सही तरीके से बैलेंस नहीं किया था। माइंड बैलेंस नहीं था इसीलिए गाड़ी बैलेंस खो बैठी। माइंड बैलेंस होता तो कितनी भी प्रतिकूलता सामने आ जाए, कैसे भी रोड सामने आ जाए, कैसे भी ट्रैफिक सामने आ जाए, और सामने वाली गाड़ी कैसे भी चलते हुए आ जाए, आपका माइंड बैलेंस है ना, आपको इमीजिएट डिसीजन लेना आएगा, एक्शन चेंज करना आएगा, गियर चेंज करना आएगा, आपको आगे पीछे सब कुछ समझ आएगा। केवल आपका माइंड बैलेंस होना चाहिए, और माइंड ही गड़बड़ है तो लोग खाली सड़क पर भी एक्सीडेंट कर बैठते। कोई सामने से टकरा नहीं रहा तो भी वो जाकर के बंद पड़ी गाड़ी के पीछे टक्कर लगा देते। जो गाड़ी बंद खड़ी थी, चल भी नहीं रही थी, उससे जाकर के टक्कर खा करके अपनी गाड़ी को मार दिया, पेड़ों से टकरा लिए। और कई बार तो जो रोड के बीच के अंदर आपके डिवाइडर बने होते हैं, लोग उस डिवाइडर से जाकर के टक्कर खा करके एक्सीडेंट कर बैठते हैं। अब उसको क्या कहेंगे हम? इसको बैलेंस किए बिना चल पड़े थे। कितना जरूरी है इसको बैलेंस करना। सारे रिश्ते बिगड़ते हैं इसलिए नहीं कि लोग खराब है, इसलिए कि दिमाग खराब है। लोग खराब इसलिए रिश्ते नहीं बिगड़ते, दिमाग खराब होता है तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए दिमाग को ठीक करने के लिए धर्म साधना करो, और वो धर्म साधना इसलिए मत करो कि खाली रट्टा मारना है, खाली नियम पूरा करना है, क्योंकि खाली माला पूरी करके नियम पूरा, इसलिए मत करो। वो धर्म साधना उतनी सजगता से हो जितना भूख लगती है, तब हम भोजन की प्रकृति पे भी ध्यान देते हैं कि इस टाइम ये खाने का मन कर रहा है, कहते हैं ना, इस टाइम मेरे पेट को ये सूट होगा ये सूट नहीं होगा, पता लगता है। तो दिमाग के लिए क्यों नहीं पता लगता कि कौन सी धर्म की आराधना विधि इस टाइम मेरे लिए सूटेबल होगी? पता करके रखो ना। स्वाध्याय भी है, ध्यान भी है, भक्ति भी है, प्रार्थना भी है, जाप भी है, पूजा भी है, समर्पण की और कई सारी विधियां भी है। इस टाइम कौन सी विधि आपके लिए सही रहेगी वो विधि अपनाओ, जिससे आपका मन मस्तिष्क दुविधा से बाहर आ जाए, और जैसे वो दुविधा से मुक्त हुआ आपको तुरंत पता लगेगा कि धर्म आराधना की और अब मेरे मस्तिष्क की सारी विकार दूर हो गए, हृदय की भावनाओं में अशुद्धियां सारी दूर हो गई। जब भावना की अशुद्धियां दूर हो जाए और सोच की नकारात्मकताएं दूर हो जाए, और जब अपने जीवन में अपने शरीर में प्राणों का प्रवाह निर्द्वंद बहता हुआ महसूस होने लगे, आप हल्का फुल्कापन महसूस करने लगो, तो समझना कि जो धर्म आराधना हुई वो सफल हो गई, वो सक्सेसफुल हो गई। वो जमाना गया जब लोग कहते थे ये करो अगले जन्मों में तुम्हें वो स्वर्ग मिलेगा, वो पुण्य मिलेगा। इस लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप भी ऐसी लैंग्वेज मत बोलो कि अभी सामायिक करोगे तो कल स्वर्ग मिलेगा। आप इमीडिएट जैसे स्नान करते ही फील करते हो कि मैं फ्रेश हुआ, ऐसे ही प्रवचन सुनते ही, स्वाध्याय करते ही, ध्यान लगाते ही आपको फील होना कि वो पुराना बर्डन सारा हट गया, अशुद्धि सारी दूर हो गई, गंदगी सारी निकल गई, दोषों से मैं मुक्त हुआ। और वो कब फील होगा? जब जैसी बीमारी है वैसा निदान करोगे तो फील होगा। बीमारी कहीं है और उपचार कहीं है, परिवर्तन नहीं आएगा। और आज दिन तक हम ऐसा ही करते रहे, हम जाप करे जा रहे हैं लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है उस पर जरा भी ध्यान नहीं लगा रहे। हम तप भी किए जा रहे हैं लेकिन एक्चुअल जिससे हम ताप पा रहे हैं उस ताप को दूर करने वाला तप नहीं कर रहे। लोगों ने शास्त्र भी रट लिए लेकिन शास्त्र की कोई भी गाथा जो उनकी जिंदगी की समाधान होती उसको उन्होंने अप्लाई नहीं किया। और तब क्या हुआ? शास्त्रों से बुद्धि भर गई, जाप की गणनाओं से कॉपियां भर गई, लिखते ना लोग कॉपी में, जाप की गणनाओं से कॉपियां भर गई, लेकिन आपकी आदमी की जिंदगी में जो जैसे समस्याएं थी वो वहीं के वहीं रह गई। तो धर्म प्रायोगिक हो, प्रैक्टिकल हो, जहां प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के रूप में हो। और वो सॉल्यूशन किसका करेगा? हमारी सोच का, हमारी भावनाओं का, हमारी अवस्थाओं का, हमारे भीतर की अवस्थाओं का। इसीलिए तो जब हम साधना करते हैं तो हमें इन सारी भीतर की अवस्थाओं को जानने का ज्ञान देना दिया जाता है। तस्स उत्तरी करणेनम कहा जाता है। तस्स यानी वह आत्मा जो अभी विभावों में है, कषायों में है, समस्याओं में है, उस आत्मा को अपनी समस्याओं, अपने प्रश्नों, अपने आग्रहों से उत्तरीकरण करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हम कर रहे हैं साधना। अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अपने बोध के स्तर को शुद्ध कराने के लिए ये साधनाएं हो। और तब देखो एक एक व्यक्ति उस धर्म को प्रायोगिक रूप से जिएगा, अन्यथा धर्म की धारा एक तरफ बह रही है और कर्मों में वही विसंगतियां भरी पड़ी है, दोनों के बीच में कोई समन्वय नहीं होता। और जब समन्वय नहीं होता तो आदमी को लगता है औपचारिकता निभा लो, सावन आया है मुंह पति बांध के सामाई कर लो। नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के देखो और खुद के लिए करो, किसी परलोक के लिए नहीं करो। और इस दिन की, आज के दिन की दिमाग की समस्याओं के समाधान के लिए करो, दिल की समस्याओं के समाधान के लिए करो, भावनाओं की समस्या के समाधान के लिए करो। जब उन समस्याओं के समाधान के लिए करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली प्रश्न पैदा होंगे कि मेरे समस्या ये है, मेरा मार्ग क्या है, मेरी स्थिति यह है, उसका हल क्या है, ये सवाल पैदा होंगे। और जब इन सवालों के उत्तर ढूंढोगे ना तो ये सारे सूत्रों का महत्व महिमा क्या है, सूत्रों का महात्म्य क्या है, वो समझ आएगा। जैसे भूखे आदमी को भोजन का महत्व पता लगता है, बीमार आदमी को औषधि का महत्व पता लगता है, बरसात में भीग रहे आदमी को छतरी का महत्व पता लगता है, धूप में घूम रहे आदमी को वृक्ष की छाया का महत्व पता लगता है। ऐसे ही जब आपको इन सूत्रों का महात्म्य अपने संदर्भों में पता लगेगा तब वो सूत्र आपके लिए असली रूप में काम करेंगे, अन्यथा हम मानते हैं कि शास्त्रों पे विश्वास करो लेकिन हम शास्त्रों के सूत्रों को जानते नहीं और अनुभव किए नहीं, और जो अनुभव नहीं है वह सत्य नहीं। अनुभव ही सत्य होता है। वो अनुभव अपने से जगाने के लिए आपको अपनी समस्याओं का मार्ग खोजना सीखना होगा। हम उस मार्ग की खोजने में सहायक बन सकते हैं लेकिन आप स्वयं जब तक प्रश्न ना उठाओगे तब तक उस सही समाधान को प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए सजग होकर के धर्म आराधना करो, केवल विश्वास के आधार पर नहीं, विवेक पूर्वक विज्ञान और विश्वास के आधार पर चलो तो जीवन सफल होगा। जय हो।